ओम विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी के तत्व विवेक नामक प्रकरण के छठा श्लोक पर विचार चलेगा। अभ्यास के लिए छठा श्लोक। सबोधो विषयात् भिन्नो न बोधात् स्वप्नबोधवत् एवं स्थानत्रयप्येका संवित् तद्वत् दिनांतरे मासाब्दयुगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा नोदेति नास्तमित्येका संविदेशा स्वयं प्रभा इयमात्मा परानन्दः परप्रेमास्पदं यतः मानभूवं हि भूयासम् इति प्रेमात्मनीक्षते तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्र नैवं मन्यार्थमात्मनि अतस्तत्परमं तेन परमानन्दतात्मनः इत्थं सच्चित्परानन्दः आत्मा युक्त्या तथाविधम् परं ब्रह्म तयोश्चैक्यम् श्रुत्यन्ते सूपदिश्यते। प्रसंग चल रहा है शब्द स्पर्श आदि विषय अलग अलग हैं, लेकिन इन विषयों का जो संबंध है यानी ज्ञान है वह अलग अलग नहीं है। इसी तरह स्वप्नावस्था के विषय भी अलग अलग हैं, लेकिन स्वप्नावस्था का जो संबित है वह अलग अलग नहीं है। इसी तरह सुषुप्ति अवस्था का जो विषय है वह जागृत का शब्दादि विषय स्वप्न के शब्दादि विषय से भिन्न है। जागृत का विषय स्वप्न के विषय से सुषुप्ति अवस्था का विषय भिन्न है। सुषुप्ति अवस्था में विषय क्या है? अज्ञान। सुषुप्ति अवस्था में विषय अज्ञान है। स्वप्न अवस्था में विषय संस्कार है। जागृत अवस्था में विषय स्थूल पदार्थ हैं। स्वप्न के पदार्थ अस्थिर हैं, जागृत के कुछ स्थिर हैं, सुषुप्ति अवस्था का विषय और ज्यादा स्थिर है। तो जागृत का घट तो फूट जाएगा, लेकिन सुषुप्ति अवस्था का अज्ञान तो कब नष्ट होगा? इस तरह तीन अवस्था हो गए। एक ही दिन में साक्षी द्वारा अनुभव किए जाने वाले तीन अवस्था हो गए। तीन अवस्था के तीन प्रकार के पदार्थ हो गए। लेकिन अवस्था तीन होने पर भी संबित एक ही है, ज्ञान एक ही है। पदार्थ अलग अलग होने पर भी संबित एक ही है, ज्ञान एक ही है। ये बात पांचवें श्लोक के द्वारा विद्यारण्य मुनि जी ने कल तक के प्रसंग में स्पष्ट हो चुका है। सबोधो विषयात् भिन्नो नबोधात् स्वप्नबोधवत्। सबोधो सुषुप्ति अवस्था का बोध, ज्ञान। ये कहना सर्वथा गलत है कि सुषुप्ति अवस्था में कोई ज्ञान नहीं होता। ये कहना सर्वथा गलत है। न किंचित अवेदिशम, व्यक्ति क्या बोलता है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन यह नहीं कहता कुछ ज्ञान नहीं हुआ का अर्थ हुआ अज्ञान। मुझे अज्ञान का ज्ञान हुआ ये कोई नहीं कहता। सोकर उठने के बाद मुझे अज्ञान का ज्ञान हुआ ये कोई नहीं कहता। उल्टा क्या कहता है, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं जाना। अब विचार करो, कुछ नहीं जाना मतलब अज्ञान, उसको जाना कि नहीं, यही इतने यही पर अटका हुआ है। सुषुप्ति का विषय एक है, सुषुप्ति अवस्था में घटपट आदि हजार विषय नहीं है। सुषुप्ति में सब्जेक्ट ओनली वन पीस है, सब्जेक्ट पदार्थ वस्तु सब्जेक्ट खाली एक है, उसे को जाना। तो वो जो जाना है सब बोध स्व विषयात भिन्न, बोध अपने विषय से भिन्न होता है। दूसरी भाषा में ज्ञान अपने ज्ञेय से भिन्न होता है। ज्ञान जिस पदार्थ को जाना गया, ज्ञान उस पदार्थ से भिन्न होता है। सबोधो विषयात भिन्न, सुषुप्ति अवस्था का जो ज्ञान है वह अपने ज्ञेय से भिन्न हो है। लेकिन नवोधात भिन्न, बोध से भिन्न नहीं है। स्वप्न बोध से भिन्न नहीं है। सुषुप्ति अवस्था का बोध स्वप्न अवस्था के बोध से भिन्न नहीं। पिताजी के थाली का रस और मेरे थाली का रस, तो पिताजी के थाली का कटोरी अलग है, मेरे थाली का कटोरी अलग है ना? क्योंकि पिताजी के थाली अलग है, मेरी थाली अलग है, तो पिताजी के थाली में रखी हुई कटोरी अलग है, मेरे थाल में रखी हुई कटोरी अलग है। लेकिन पिताजी के कटोरी में जो रस है और मेरे कटोरी में जो रस है वह रस भिन्न नहीं है। कटोरी भिन्न होते ही रस में भिन्नता नहीं हो सकती। इसीलिए विषय भिन्न होते ही विषय का ज्ञान में भिन्नता नहीं हो सकती। अवस्था भिन्न होने पर भी अवस्था के ज्ञान में भिन्नता नहीं। प्रसंग यही चल रहा है। सबोधो विषयात भिन्नो न बोधात स्वप्न बोधवत या जागृत बोधवत अनुमान कर दिया है। एवं एवं शब्द से एक दिन में तीन अवस्था हो गए, तीन अवस्था में पदार्थ तीन प्रकार के हो गए। बात तो समझ रहे हो ना? एक दिन में तीन अवस्था कौन कौन सी? सुषुप्ति। और तीन अवस्था में पदार्थ तीन प्रकार के हो गए, कौन कौन से? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। बोलो ना, यही है। स्थूल में घटपटादि, सूक्ष्म में घटपटादि का संस्कार, कारण में अज्ञान। कारण में क्या है पदार्थ? अज्ञान। इसीलिए राम गीता में भगवान राम ने लक्ष्मण को अज्ञान के बारे में कहा कि हे भैया लक्ष्मण, अज्ञान कैसा है? मूल कारण। आप लोगों ने राम गीता पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो? राम गीता सुना है कि नहीं सुना? अध्यात्म रामायण अंतर्गत राम गीता है। राम गीता पर हमने यहां प्रवचन किया है। मुझे लगता है 20 वर्ष हो चुका है, 17-18 साल तो हो ही गया होगा, उससे कम तो नहीं है। प्रेमपुरी ने वो प्रवचन सुरक्षित रखा है, रामगीता के प्रवचन को प्रेमपुरी ने सुरक्षित रखा है। तीन वर्ष लगातार लगाकर हमने उस पर प्रवचन किया था। तो रामगीता जैसे भगवत गीता है वैसे रामगीता है। भगवत गीता में वक्ता कृष्ण है, श्रोता अर्जुन है। रामगीता में वक्ता राम है, श्रोता लक्ष्मण है। भगवत गीता के रचनाकार भगवत गीता महाभारत अंतर्गत है, रामगीता अध्यात्म रामायण अंतर्गत है, अध्यात्म रामायण ब्रह्मांड पुराण अंतर्गत है। अध्यात्म रामायण किस अंतर्गत है? ब्रह्मांड पुराण अंतर्गत है। ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत अध्यात्म रामायण, रामायण के अंतर्गत रामगीता। अब महाभारत के रचनाकार भी वेदव्यास जी है और ब्रह्मांड पुराण के रचनाकार भी वेदव्यास जी है, तो उसमें भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया, अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणम। ये भैया संसार का सब संसार का मूल कारण अज्ञान है। तदहानमेवात्र विदो विधीयते। अब यह देखो बड़ा विचित्र अवस्था है। मूल कारण को हम संरक्षित रखना चाहते हैं, बचाए रखना चाहते हैं। जो मूल कारण है उसको तो हम बचाए रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं। और वेदांत दर्शन मूल कारण को नाश करना चाहता है। हिंदी में एक कहावत है, अकाल में बीज बचाना चाहिए, ऐसा नहीं कि अकाल हो गया तो जो खाने को मिला है वो सब खा जाओ, ये समझदारी नहीं है। उस अकाल में भी जिस तरह भी बीज तो बचानी चाहिए, क्योंकि बीज बचाए रखोगे तो दूसरे साल बारिश होगी तो फिर काम आएगा ना। अब बीज ही खा गए तो फिर क्या करोगे? व्यवहार में तो ये कहा जाता है कि बीज बचाओ, बीज माने कारण, बचाए रखो। वेदांत कहता है कि कारण का नाश करो, अनर्थ को नाश करना है तो अनर्थ का जो कारण है उसको नाश करना पड़ेगा कि नहीं? संसार अनर्थ है और इस अनर्थ मूलक संसार का कारण अविद्या है, और उस अज्ञान को नाश करना वेदांत का लक्ष्य है। बोलो, आप अनर्थों को नाश करना चाहते हो कि नहीं? तब फिर संसार को नाश करना चाहते हो कि नहीं? तब फिर इस संसार का जो मूल है अज्ञान को नाश करना चाहते हो कि नहीं? ये सरासर गलत है कि महाराज मेरा संसार जैसा है वैसा ही रहने दो, अनर्थ को नाश कर दो, ये तो संभव नहीं होगा भैया।
संसार जैसा है वैसे ही सुरक्षित रहे, अनर्थ नाश हो जाए, ये नहीं होने वाला है। तब फिर मूल को नाश करना पड़ेगा। तो अज्ञानमेवास्य ही मूल कारणम तद हानमेवात्र विधो विधीयते। सारे वेद का प्रयत्न यही है, वेदांत का प्रयत्न यही है कि सर्व अनर्थ का मूल कारण जो अज्ञान है वो कैसे नष्ट हो। हम मूला विद्या को नाश करना नहीं चाहते, खाली तुला विद्या को नाश करना चाहते हैं। जड़ को उखाड़कर फेंकना नहीं चाहते, केवल शाखा काटते रहते हैं। तब हर साल शाखा काटे जाओ, जड़ में पानी डाले जाओ और शाखा काटे जाओ। जड़ को तुम ही सुरक्षित रख रहे हो और शाखा काटे जा रहे हो। तब संसार वृक्ष का उच्छेद नहीं हो पा रहा है। अदश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। तदपदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् कथा न निवर्तन्ति भूय। तब क्या होगा? तो इसको जड़ से ही उखाड़ डालो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। हमारी जहां जहां आसक्ति है वह आसक्ति बनी रहे और संसार वृक्ष उखड़ जाए। तुम्हारी आसक्ति ही संसार वृक्ष को मल जल कर रही है। तुम्हारी आसक्ति ही संसार वृक्ष जो अनर्थ का मूल है मलजल कर रही है। इसलिए वह आसक्ति को छोड़कर असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा ही संसार वृक्ष उच्छेद होगा। तो फिर दोबारे इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो तद हानमेवात्र विदो विधीयते। राम ने कहा लक्ष्मण को, समस्त वेद और वेदांत का प्रयत्न यही है कि उस मूल को नाश करो। फिर कौन उस मूल को नाश करने में समर्थ है भाई? जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने असंग शस्त्र संसार वृक्ष को काटने में समर्थ है ये कहा, और कोई हथियार समर्थ नहीं है। असंगता रूपी हथियार ही संसार वृक्ष को काटने में समर्थ है, और कोई हथियार संसार वृक्ष को काटने में समर्थ नहीं है। इसी तरह भगवान राम ने रामगीता में लक्ष्मण को कहा, इस अज्ञान को नाश करने में तो विद्यैव तन्नाश विधौ पटीयसी। उस मूल अज्ञान को नाश करने में तो ब्रह्म विद्या ही समर्थ है, उसके अलावा और कोई विद्या समर्थ नहीं है। इसलिए विद्यैव तन्नाश विधौ पटीयसी न कर्म तज्जम स विरोध मीरितम। व्यतिरेक युक्ति प्रयोग किया, ब्रह्म विद्या के अलावा कर्म योग भक्ति कुछ भी उस मूल अज्ञान को नाश करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ब्रह्म विद्या ही अज्ञान के साथ विरोध है। ब्रह्म विद्या ही अज्ञान को विरोध कर सकता है, इसलिए नाश कर सकता है। और कर्म तो अज्ञान का विरोधी नहीं है। अज्ञान हुए बिना कर्म नहीं होगा। ये देख लो, मूला विद्या के बिना कर्म नहीं होगा। मूला विद्या होगी तब अपने को तुम जीव मानोगे और कर्ता भोक्ता मानोगे। मूला विद्या होगी तो कर्ता भोक्ता मानोगे, तब कर्म में प्रवृत्त होगे। तो अविद्या मूलक जो कर्म है वह अविद्या को नाश करने में समर्थ नहीं है। ये देखो, तो यहां विद्यारण्य मुनि जी पंचदशी में जिस तरह मूल विद्या, मूला विद्या, कारणा विद्या को नाश करने की बात करते हैं। तो सुषुप्ति में विषय क्या है? अज्ञान। और उस अज्ञान ज्ञात होगा कि नहीं? कल आपने कह दिया था अज्ञान तो ज्ञात होता ही है। तो सुषुप्ति अवस्था का अज्ञान जागृत अवस्था का पदार्थ परस्पर भिन्न है, लेकिन जागृत पदार्थ के पदार्थों का ज्ञान, स्वप्नावस्था के पदार्थों का ज्ञान और सुषुप्ति अवस्था के अज्ञान का ज्ञान, ज्ञान एक ही है, ज्ञान में भिन्नता नहीं। एवं स्थानत्रये अपि, एवं इस प्रकार से स्थानत्रये, स्थानत्रय माने अवस्थात्रय, तीन स्थान में, तीन अवस्था में एका संवित, स्थानत्रय एका संवित, ये निष्कर्ष हो गया। अब उदाहरण दे रहे तद्वत, इसी तरह दिनांतर है, इसी तरह दिनांतरे दूसरे दिन, दिनांतर माने दूसरे दिन। एक दिन में ये तीन अवस्था हो गए, तीन अवस्था में तीन प्रकार के पदार्थ हो गए। तीन प्रकार के पदार्थ होने पर भी संवित एक ही हो गया, तद्वत दिनांतर है। तो दूसरे दिन तो क्या हुआ? आज के जागृत का पदार्थ और दूसरे दिन के जागृत के पदार्थ, पदार्थों में भिन्नता हो सकते हैं। समझ गए? एक पौधा लगा लो, विज्ञान के अनुसार आज के पौधे में और कल के पौधे में अंतर है। क्योंकि आज की अपेक्षा कल थोड़ा बड़ा हो चुका हुआ होता है, अंतर हो गया ना, इसलिए पदार्थ में अंतर आ जाएगा। कल आप यूं कहोगे कि जिस पौधे को मैंने आज देखा उसी पौधे को कल भी देखूंगा और परसों भी देखूंगा। विज्ञान ये कहता है कि ये पौधा बदल चुका है, भले ही पौधा बदल चुका हो लेकिन ज्ञान बदलता नहीं। तद्वत दिनांतर है, इसी तरह यह निश्चय कर लो कि दूसरे दिन में भी तीन अवस्था होंगे, तीसरा दिन आएगा तो तीसरे दिन के भी पदार्थ भिन्न होंगे। गत कल का पदार्थ, आज का पदार्थ और आने वाले कल का पदार्थ में भिन्नता हो सकते, लेकिन गतकल का जो संबित, आज का संबित और आने वाले कल का जो संबित है, ज्ञान है, ये ज्ञान में भिन्नता नहीं हो सकती। ज्ञान एक है, ज्ञान में एक रूपता है। की रोटी आज बासी होगी कि नहीं है? कल के रोटी का ज्ञान आज बासी होगा कि नहीं? कल आलू बॉयल करके रखा था, फ्रिज में रखने भूल गए थे, तो कल का जो आलू था बड़ा फ्रेश था, थोड़ा नमक, कोतमिर्च, हरा मिर्ची, चटनी, जिह्वा में पानी ना आ जाए, चाट बन जाएगा कि नहीं बोलो? क्या फ्रेश था! संयोग से फ्रेम फ्रिज में न नहीं रख पाए, बाहर ही पड़ा रहेगा। और आज तुमने देखा, चाट बनाने के लिए जाओगे तो खाने लायक होगा? नहीं होगा। तो ये बदलाव आ गया कि नहीं? लेकिन कल का जो संबित है और आज के संबित में दुर्गंध आएगा। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसमें बदलाव नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वह एक ही है। दो होते तो शायद उसमें वो संबित में सड़ा ना आती। कल के संबित ज्ञान और आज के ज्ञान ये अलग अलग होते तो शायद उस ज्ञान में भी सड़ा ना आती और आलू की तरह वो ज्ञान को रिजेक्ट करना पड़ता, फेंकना पड़ता है ना? इसलिए ज्ञान आज तक किसी ने फेंका है? क्यों? ज्ञान एक है। ज्ञान आज भी उतने ही ताजा है जो कल था, एक ही है। तो आज के ज्ञान से कल का ज्ञान और ज्यादा फ्रेश होगा। तद्वत दिनांतरे, मूल श्लोक देख लो, ये फॉर्मूला तुम दिन प्रतिदिन में लगाते रहो। संबित एक रूपा, संबित एक ही है। अब ये दिनांतर की बात छोड़ दो, फिर एक वर्ष के बाद तो बदल जाएगा। चौबीस घंटे का एक दिन, पंद्रह दिन का एक पक्ष, दो पक्ष का एक महीना, तीस दिन का एक महीना, तो मास आब्द युग कल्पेशु लेव जी, दिनांतरे मास आब्द मास, वैशाख महीना का ज्ञान और जेठ महीने का ज्ञान अलग अलग होगा। जनवरी का ज्ञान और फरवरी का ज्ञान अलग होगा। संबित एक रूपा, जनवरी का क्लाइमेट और फरवरी का क्लाइमेट में अंतर होगा, वातावरण में फर्क पड़ेगा, लेकिन संबित में फर्क नहीं पड़ेगा। मास तो बारह महीने में संबित एक ही रहेगा, तीसों दिन में संबित एक रहेगा, चौबीसों घंटे में संबित एक रहेगा, बारह महीने में संबित एक रहेगा। मास अब्द, अब्द माने संवत्सर वर्ष, तो एक वर्ष और दस वर्ष, ज्ञान तो एक ही, ज्ञान कभी पुराना नहीं होता। युगा, यहां तक कि युग की बात कर दी लेव जी, मास अब द युग, सत्यादि युग है ना, सत्य त्रेता द्वापर कली, ऐसे युग हजारों परिवर्तन हो जावे लेकिन संबित बदलता नहीं। सत्ययुग का संविद और कलियुग के संविद में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सत्ययुग के इंसान और कलियुग के इंसान में फर्क पड़ सकता है, सत्ययुग के पदार्थ और कलियुग के पदार्थों में फर्क पड़ सकता है, समझे नहीं? किंवदंती कहावत है, सत्ययुग में मनुष्य बहुत लंबे लंबे होते थे, और कलयुग में आकर मनुष्य की हाइट छोटी हो गई। हमको बचपन में सुनाया करते थे, कलयुग के अंत में मिर्ची को तोड़ने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ेगी मनुष्य को, पेड़ में चढ़ना, मिर्ची के पेड़ में, हाँ मनुष्य इतना छोटा हो जाएगा, ऐसा सुनाते थे बचपन में, मनुष्य इतना छोटा हो जाएगा कलयुग के अंत में कि मिर्ची के पेड़ में से मिर्ची तोड़ने के लिए उसे सीढ़ी लगानी पड़ेगी, तभी वो मिर्ची तोड़ पाएगा। अब हमने मान गए, उस समय तो बचपन में हम ये नहीं कह सकते कि मूर्खो, मनुष्य की हाइट कम होगी तो क्या मिर्ची का पेड़ का हाइट और बढ़ता जाएगा, उसकी हाइट भी तो कम होगी, दिख ही रहा है ना आजकल हाइब्रिड पेड़ वगैरह दिख रहे हैं कि नहीं है? पहले आम के पेड़ कितने बड़े बड़े होते थे, लोकल आम का पेड़ देख लो इतना बड़ा बड़ा होता था, अब आजकल हाइब्रिड आम गमले में क्या बढ़िया बढ़िया फलने लग गए हैं, है? कुछ भी हो, तो विज्ञान के प्रभाव से है, तो मनुष्यों की हाइट घटेगी तो पेड़ की हाइट भी तो घटेगी, सीढ़ी लगाने की नौबत कहां से आएगी, है? लेकिन हम मान गए उस समय, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग, युग अलग अलग हैं, अलग अलग युग में वस्तु के धर्म अलग अलग होंगे, स्वभाव अलग अलग होंगे, भले ही हों, वैचित्रता होना ये स्वभाव है। शब्द स्पर्शादयो वैद्या वैचित्र्य जागरे, जैसे शब्द स्पर्श आदि जो पदार्थ हैं जागृत में विचित्रता है, वैसे युग में विचित्र हो जाएंगे, कल्प में युग विचित्रता आ जाएगी, फर्क पड़ जाएगा। लेकिन ये सब कुछ फर्क होने पर भी संविद में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। मासाब्द युग कल्पेशु गता गम्येष्वने कधा, गत मासाब्द युग कल्प, आगामी मासाब्द युग कल्प, अनेकदा, ऐसे हजारों बार युग आ जाए, हजारों बार कल्प आ जाए, हजारों बार हजारों दिन बदल जाएं, फिर भी संविद नो देती, तुम्हारे हाथ में कॉपी है पढ़ लो भाई, हम तो उसी की व्याख्या कर रहे हैं, संविद नो देती, संविद जन्मता नहीं, ज्ञान पैदा नहीं, सत्ययुग में ज्ञान पैदा नहीं होगा, कलयुग में ज्ञान पैदा नहीं होगा, द्वापर युग में, त्रेतायुग में ज्ञान पैदा नहीं होगा, हाँ नो देती, दिन में ज्ञान पैदा हो जाए और रात में ज्ञान मर जाए, हाँ तुम्हें कैसा लग रहा है? दिन में ज्ञान पैदा हो जाए और आत्मज्ञान मर जाए। नोदेति सूर्य भले उदित हो जाए लेकिन ज्ञान उदित नहीं होता। नोदेति उत एति उपराना उदित बोलते हैं ना, उदित उपराना, उत माने ऊपर, इत माने आना, उदित ऊपर आने को ही तो पैदा होना बोलते हैं और क्या। न उदेति न अस्तमयति, तुम जग गए तो ज्ञान पैदा हो गया और तुम सो गए तो ज्ञान मर गया। बेटा यदि तुम सो गए और ज्ञान मर गया तो तुम सो गए ये जाना किसके द्वारा जाएगा? बोलो, तुम सो गए और ज्ञान मर गया तो तुम सो गए ये जाना किसके द्वारा जाएगा? ज्ञान तो मर गया तो क्या प्रमाण है कि तुम सो गए? यदि ज्ञान तुम्हारे सोने पर ज्ञान मर जाता है तो फिर क्या प्रमाण रहेगा कि तुम सो गए? बोलो, तुम्हारे शयन का साक्षी कौन होगा? फिर तुम्हारे शयन का अभिभाषक कौन होगा? तुम्हारे शयन का ज्ञाता कौन होगा? तो ज्ञान नष्ट होता है तब ये बताना जरूरी है कि उस ज्ञान नष्ट होगा तो ज्ञान के नष्ट हुए को जानेगा कौन? इंसान। ये प्रसंग सुनकर ये दिमाग से भ्रांति हटा देना, इंसान अलग है ज्ञान अलग है, ये भ्रांति हटा देना। जिसको इंसान कह रहे हो उसी का नाम तो ज्ञान है, और जिसको तुम इतनी जोर लगाकर संबित संबित कह रहे हो उसी का नाम तो इंसान है, है? शरीर का नाम इंसान है? शरीर का नाम आत्मा है? बोलो, शरीर का नाम आत्मा है? ज्ञान का नाम आत्मा है? तो आगे बताएंगे आठवां श्लोक, इयम आत्मा, बस खत्म। इतने जोर लगाकर जिस संबित की बात कर रहे हैं, ये संबित संबित है क्या चीज? बोले इयम आत्मा, इसी का नाम आत्मा है। तो ये संबित न उदेति, संबित पैदा नहीं होता, समझे कि नहीं? जो भी पैदा होता है संसार में, जो भी, वह पैदा होने से पहले उसका अभाव होगा, उसको क्या बोलते हैं? प्राग अभाव। जो भी पैदा होगा उसका पहले क्या होना पड़ेगा? प्राग अभाव होना पड़ेगा। प्राग अभाव होगा तभी ना वो पैदा होगा। पहले से ही जो है उसकी क्या पैदाइश होगी? जिसका प्राग अभाव नहीं है उसका जन्म कैसे होगा? बोलो, है? जिसका प्राग अभाव नहीं होगा उसका जन्म कैसे होगा? जन्म किसका होगा? जन्म किसका होगा? प्राग अभाव वाले का ही जन्म होगा। प्राग अभाव, प्राग माने उत्पन्न होने से पहले, जिसका अभाव सिद्ध होगा वो पैदा होगा। उत्पन्न होने से पहले जिसका अभाव सिद्ध नहीं होगा, इसका मतलब वो भाव है, इसका मतलब वो पहले से है। तो पहले से है तो क्या पैदा हुआ फिर? वो संबित को प्राग अभाव मानोगे, ध्यान दो, यदि संबित को पैदा होने वाला मानने के लिए प्राग अभाव मानना पड़ेगा, और यदि संबित को प्राग अभाव मानोगे तो प्राग अभाव को जानोगे किससे? हैं? बोलो। संबित पैदा होने से पहले तो है नहीं, तो पहले नहीं है तो क्या हुआ? प्राग अभाव है। प्राग अभाव को फिर संबित है ही नहीं तो जानोगे किससे? तो प्राग अभाव का साक्षी कौन होगा? प्राग अभाव का ज्ञाता कौन होगा? प्राग अभाव का प्रकाशक कौन होगा? संभव ही न होने के कारण क्या हुआ? संबित न उदय थी। संबित तो स्वरूप से सिद्ध है, वो न सत्ययुग में पैदा होगा संबित, न द्वापर युग में, न त्रेता युग में, न कलयुग में। ज्ञान न जागृत में पैदा होगा, न स्वप्न में पैदा होगा, न सुसुप्ति में है। दूसरी बात, ज्ञान मर जाता है यानी नष्ट होता है। कहोगे तो मान लो कि ज्ञान नष्ट होता है, तब नष्ट होने का मतलब प्रध्वंसाभाव होना, समझे नहीं? ज्ञान नष्ट होने का मतलब प्रध्वंसाभाव होना, नष्ट होकर अभाव होना प्रध्वंसाभाव। तो ज्ञान नष्ट हो गया, तो ज्ञान नष्ट हो गया ये जानेगा कौन फिर? ज्ञान के नाश को जानेगा कौन? ज्ञान ही नष्ट हो गया तो ज्ञान तो है ही नहीं, अब फिर जानेगा कैसे? तो फिर ज्ञान का नाश होना भी संभव नहीं है, है? किसी भी पदार्थ को जानने के लिए ज्ञान के अलावा कोई दूसरा चीज है? बोलो। तो ज्ञान मरेगा, नाश होगा, तो ज्ञान के मृत्यु का साक्षी कौन होगा? बोलो, आत्मा। अरे ज्ञान अलग आत्मा अलग होता तब तो ठीक था, तो जो ज्ञान है उसी का नाम आत्मा है। हाँ, इसीलिए विद्यारण्य मुनि जी ने क्या कह दिया है संबित के बारे में? न उदेती न अस्तमयेती। संबित न पैदा होता है न नष्ट होता है। नोदेती नास्तमयेत्येका। संबित के बारे में चार चीज यहां इस पंक्ति से निश्चय कर लेना। एक चीज, संबित न उदेती, संबित पैदा नहीं होता, ज्ञान पैदा नहीं होता, समझ गए? दूसरी चीज, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, ज्ञान नाश नहीं होता ज्ञान का, न अस्तमयेती। तीसरी चीज, ज्ञान एक, ज्ञान 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 दस ज्ञान नहीं होते, ज्ञान एक है। घट ज्ञान, पट ज्ञान, सट ज्ञान, मठ ज्ञान, ये दस नहीं है लालू के 14 बेट बच्चों की तरह। हाँ। लालू प्रसाद के 14 बच्चों की तरह एक से अलावा दूसरा होता ही नहीं है, एक का। चौथी बात, ज्ञान के बारे में क्या समझना, स्वयं प्रभा। ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता, ज्ञान एक है और वो ज्ञान स्वयं प्रभा, वो ज्ञान स्वयं सिद्ध है, उसको कोई और सिद्ध नहीं करेगा, ज्ञान आप ही सिद्ध है, स्वयं प्रभा। ये दो श्लोक का अर्थ हो गया, समय ज्यादा हो गया। अब इतना इस ज्ञान का क्या कारण, ओम।